15 नवंबर 2016 की मुरली। अगला प्रश्न 19। बाप दादा एक एक रत्न को देख खुश होते हैं, क्यों? बाप दादा एक एक रत्न को देख खुश होते हैं, क्यों? सभी विशेष है, अमूल्य है, बाप को पहचानने वाले हैं और सारे विश्व को पवित्र बनाने वाले हैं और उसके द्वारा चुने हुए हैं, बाप का नाम भला करने वाले हैं और विश्व का राज्य अधिकारी बच्चे
हैं।
यही आधार मूर्त है, पूर्वज है,
राइट हैंड
है, सहयोगी है, स्नेही है और बाप दादा एक एक रतन को देख खुश होते हैं, क्यों?
मेरा बच्चा
बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं और भगवान एक एक को देख खुश होता है।
मेरा कहना मानते हैं,
ये मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं, तो ही तो खुश होगा ना। जो कहना ही नहीं मानते वो कहाँ से खुश होगा। तो बहुत मूल्यवान है। अगले संडे की मुरली है, नैरोबी पार्टी से मुलाकात, वो सारा इस प्रश्न का उत्तर है उसमें। एक एक बच्चा मूल्यवान है, एक एक बच्चा अमूल्य रत्न है। बच्चे जो है वो स्नेही और सहयोगी है। लौकिक में भी जो स्नेही होते हैं वो तन मन धन से न्योछावर हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी बच्चे स्नेही हैं और बाप के सहयोगी हैं। एक एक कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे हैं। वहां के जो महात्मा है वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कोटों में कोई और कोटों कोई में कोई हो, इसके लिए करोड़ों में आप एक हो। वो केवल महान आत्मा है, वो नामधारी है, आप काम करने वाले हो। तो क्यों सिकिला देव और बाप दादा क्यों खुश होते हैं? क्योंकि एक एक स्नेही है, एक एक सहयोगी है और एक एक कोटों में कोई और कोई में कोई है, क्योंकि एक एक अमूल्य रत्न है, क्योंकि एक एक कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। तो और क्या हो सकता है कि बाबा बच्चों को एक एक रत्न को देख खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा के शोक है, इसके शोपीस है और पुरानी दुनिया छोड़ के आए हैं। बाप दादा एक एक रतन को देख खुश होते हैं क्योंकि पुरानी दुनिया इन्होंने छोड़ी है और श्रीमत पर चलते हैं, कहना मानते हैं, आज्ञाकारी है, कुल कर्म कितने ही करते हैं, मनमत और परमत पर नहीं चलते। परसों वरदान था, मनमत की परिभाषा थी उसमें। श्याम भाई क्या थी मनमत की परिभाषा? हाँ, एक्यूरेट। अल्पज्ञ आत्माओं के संस्कार से जो संकल्प उत्पन्न होते हैं वो सभी मनमत है। कैसी सुंदर परिभाषा दी है मनमत की। जो अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है, तो मनुष्य सभी, वो सभी अल्पज्ञ आत्माओं से के जो संस्कार है, हरेक के संस्कार, हरेक की पर्सनैलिटी भिन्न भिन्न है, उनसे जो उत्पन्न संकल्प है वो सभी संकल्प मनमत है। ये तीन ही अलग अलग करना है, मनमत क्या है, श्रीमत क्या है, परमत क्या है, इनको छांटना, यही पुरुषार्थ है। ये मनमत, ये श्रीमत, ये परमत। तो श्रीमत पर चलते हैं। और क्यों खुश होते हैं बाप दादा एक एक रतन को देखकर? थोड़े अलग प्रकार के उत्तर।
सच्चाई
है, सफाई है, पवित्रता है। सतयुगी नई दुनिया लाने की सेवा में लगे हुए हैं, बाप के मददगार है और उमंग उत्साह बहुत ज्यादा है। बाबा ने कंगन पहनने को कहा है अगले मुगले में। न्यू ईयर में 6 चीजें करनी है, एक तो कंगन पहनना है, एक तिलक, एक स्लोगन, एक नारा, एक सेवा का उद्देश्य और ताज। तो अरविंद भाई अगले संडे की जो मुरली है उस पर प्रश्न बनाने हैं आपको सैटरडे तक सुबह तक, ठीक है,
शुक्रवार शाम तक,
शुक्रवार शाम तक मतलब कल शाम तक 25 प्रश्न। तो बाबा एक एक रतन को देख खुश होते, और कोई दूसरे प्रकार का उत्तर? विश्व परिवर्तन का ठेका लिया है लंदन से मुलाकात, ब्राह्मणों का धंधा ही है सेवा, तो विश्व परिवर्तन का ठेका लिया है और
सहन करते
हैं बाबा के कारण, सहन करते हैं बाबा के कारण सहन करते हैं। बाइबल में एक वाक्य है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है कि दे लिसन टू मी दे विल लिसन टू यू, दे अब्यूज मी सो दे विल अब्यूज यू, दे वेंट अगेंस्ट मी दे विल गो अगेंस्ट यू, दे प्रोसिक्यूटेड मी दे टॉर्चर्ड मी दे विल टॉर्चर यू। मेरे साथ उन्होंने जो कुछ किया ना वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी होगा। इसके लिए उसके जितने शिष्य है उनमें से कईयों को सूली पर चढ़ाया गया, वैसा ही जैसे क्राइस्ट को चढ़ाया गया था, उसके शिष्यों को भी, बहुत सारे शिष्यों को बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ी, जो जो उसने सहन किया। पर उसने एक बात भी कही थी, अल्टीमेटली दे विल प्रेज यू एंड ग्लोरीफाई यू जस्ट एज दे विल ग्लोरीफाई मी वन डे, जैसे मेरी महिमा वो गाएंगे एक दिन वैसे तुम्हारी भी महिमा वो गाएंगे एक दिन बाद में फिर। तो बाप के लिए जिन जिन आत्माओं ने सहन किया है वो देखकर भी बाबा खुश होते हैं, और माता माताओं की, हाँ बहुत दिनों बाद आया ये पॉइंट, क्या माताओं की इन्वेंशन, माताओं का तरीका, माताओं का चमत्कार, ऐसा कुछ कहा था उस मुरली में, 3 बातें, ये देखकर भी बाबा खुश होते हैं, युक्तियां और देखा और खुश हुआ। क्यों? भगवान देख रहा है बच्चों को और खुश होता है, उनकी उनका भोलापन देखकर खुश होता है, उनकी नादानी देखकर भी खुश होता है, कितने भोले हैं, छल कपट बिल्कुल नहीं है इनमें, ऐसा भोलापन भी तो उसे बहुत पसंद है। उसको पहचान लिया, ये बहुत बड़ी खूबी है सब में, दिव्य बुद्धि है। संसार के पास, संसार में इतने इंटेलिजेंट लोग है पर उनके पास दिव्य बुद्धि नहीं है, डिवाइन इंटेलेक्ट जो है वो वही उसी को कहा जा सकता है जिसने उस डिवाइन को पहचाना, तो डिवाइन इंटेलेक्ट है और भक्ति बहुत ज्यादा की है और अभी आके मिले हैं, त्रिकिल दे चुका, भटक गए थे, भूल गए थे, खो गए थे, वापस मिल गए। आपके घर में एक नया बच्चा पैदा हुआ है ऐसा हर एक को लगता है, तो एक एक रतन को देख बाबा खुश होते हैं। कई सारे कारण और हो सकते हैं, हाँ नींद छोड़ के क्या करते
हैं,
मुझे याद करते हैं। हर एक को अपने से क्या प्रश्न पूछना है, हर एक को अपने से क्या प्रश्न पूछने हैं, सेल्फ क्वेश्चन, सेल्फ क्वेश्चनिंग, नशे और मस्ती, ज्ञान की मस्ती में कितना रहते हो, कल पूछा था बाबा ने, ज्ञान की मस्ती में कितना रहते हो, बुद्धि को चलाना है बाबा ने कहा, कल के मुरली में एक वाक्य था, बुद्धि को चलाना है वाणी पर मंथन करना है, कभी कैसी, कभी कम नशे वाली, कम कभी ज्यादा नशे वाली, वाणी अलग अलग चलती है, तो बुद्धि को चलाना है वाणी पर मंथन करना है, स्वयं स्वयं से बात करनी है, क्या क्या पूछेंगे स्वयं से, सेल्फ क्वेश्चन है, हम यहाँ क्यों आए। उस दिन भी शाम को कहा था, सुबह कहा था, वो जर्मन शासक, जर्मन दार्शनिक शोफेनहावर, वो जब सुबह सुबह बगीचा में जाता है और घूमते रहता है वहां पर, सुबह 3 बजे उसे नींद नहीं आती है, तो माली पूछता है उस शोफेनहावर को, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे प्रश्न पूछता है। वो कहता है ये तो मुझे आज तक यही तो ढूंढने आया हूँ, यही तो मुझे पता नहीं है। माली तो ऐसे ही पूछ देता है, परंतु वो तो शोफेनहावर बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, एकमात्र ऐसा हुआ होगा जिसने उपनिषदों का इतना अध्ययन किया, स्टडी किया, रीजन हर चीज में लॉजिक ढूंढा उसने। तो कौन हो ये प्रश्न, कहां से आए हो, क्या चाहिए, क्या कर रहे हो, इस तरह से प्रश्न वो कहता है कि मैं इन्हीं तो प्रश्नों को ढूंढ रहा हूं जीवन में, वही तो मुझे पता नहीं है कि मैं हूं कौन, आया कहां से हूं, क्यों आया हूं यहां, यहां मैं किस लिए आया हूं। कितना अच्छा प्रश्न है, इस मधुबन में हम क्यों आए हैं, समय बर्बाद करने के लिए आए हैं, साधनों में लिप्त होने के लिए आए हैं, इधर उधर की व्यर्थ बातें करने आए हैं, या केवल और केवल सेवा ही करने आए हैं, और कोई नहीं, स्थूल सेवा बस उतना ही करने आए थे कि और कुछ करने आए थे, मैं यहां क्यों आया हूं। जब तक ये प्रश्न स्वयं से हम नहीं पूछते तब तक धक्का लगना चाहिए अंदर कि जो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज योर ओन सेल्फ, स्वयं का ही को क्रिटिसाइज करना कि और अच्छा क्या किया जा सकता है। विदेश में बेंजामिन फ्रैंकलिन हुआ है, फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, वो हर दिन अपनी एक डायरी बनाता था जिसमें वो सेल्फ क्वेश्चन लिखता था कि मैंने चोरी तो नहीं की, मैंने कोई पाप तो नहीं किया था, और उसकी वो डायरी जो है उसमें सारे प्रश्न रोज की चेकिंग रहती थी। उसने जो किताब लिखी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑडियो और किताबें उसकी बहुत सारी अवेलेबल है यहाँ वहां, तो उसमें उसने रोज की क्वेश्चनेयर, अभी उसके पास तो ये ज्ञान भी नहीं है, ना ही वो इतना आध्यात्मिक पुरुष था, परंतु वो उसकी रोज की सेल्फ चेकिंग होती थी कि ये तो ये ठीक रहा, ये ठीक रहा, ये ठीक रहा, गलत तो नहीं बोला, किसी को दुखाया तो नहीं, सब कुछ उसमें रहता था। 12 पॉइंट्स है उसमें। वो एक दिन वो पॉइंट्स अपने गुरु के पास लेके जाता है, वहां के गुरु अर्थात कोई क्रिश्चियन के वहां के फादर, और उनको दिखाता है इस तरह से मेरी चेकिंग मैं रोज करता हूं। तो उन्होंने उसको कहा था कि इसमें एक बहुत मुख्य पॉइंट मिसिंग है, ये सारी चेकिंग की वजह से तुम अहंकारी हो गए हो कि मैं बहुत अच्छी चेकिंग करता हूँ, इसमें एक एडिशन करो, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। तो ऐसी 13 पॉइंट्स है उसकी वो पूरी सेल्फ चेकिंग की। अध्यात्म ऐसा मार्ग है कि कोई भी चीज अहंकार अहंकार उत्पन्न कर सकता है, तथा कथित हमारी कोई भी सेवा हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न कर सकती है, और अहंकार इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसको पकड़ना ही मुश्किल है, इतना वो सूक्ष्म है, उससे बहुत सुख मिलता है, और हमारे पास कारण बहुत होते हैं कि ये सब सेवा है और हमें निमित्त बनाया गया है, मैं निमित्त, मुझे निमित्त बनाया गया है, इसमें भी अहंकार है, दूसरों को नहीं बनाया, मुझे निमित्त बनाया गया।
तो क्या कहना चाहिए,
कहना ही नहीं चाहिए कुछ कहने के लिए चलो जब जरूरत हो तो कहो, परंतु खुद से ही कहते रहना, ये अहंकार का लक्षण है। जहां जरूरत है और हम को कहना पड़े वहां कहे, पर एक होता है खुद ही से बार बार कहते रहना कि मुझे निमित्त बनाया गया, मुझे निमित्त बनाया गया। तो यह अहंकार इतना सूक्ष्म है, सबसे बड़ा अंतिम शत्रु जो है इस मार्ग में, काम चला गया, क्रोध चला गया, लोभ मोह सब छूट गया, पर ये सब छूटने के बाद जो मैं है अहंकार,
मजबूरी वश कहना पड़ रहा है, मैंने मुझे निमित्त बनाया, वैसे कहना नहीं मैं चाहता हूँ,
ऐसे बोल रहा तो
सबसे लास्ट में आता है।
हाँ, मतलब ये बहुत सूक्ष्म मंजिल है, हर प्रकार की सेवा कर ली, हर प्रकार की, परंतु इन सबसे अलिप्त डायरेक्शन मिला और उड़ गए। कल कहा ना अष्ट रत्नों की निशानियां, विजयी आत्मा है, चोला खींचे ना ताने ना, बस सेकंड में अशरीदी हो जाए, ये अंतिम पार्ट है। तो उसके लिए कोई भी मैं के बंधन ना हो, मैं के इतने सारे बंधन, इतने सारे रूप है, पकड़ के रखते हैं कहीं ना कहीं। सेवा ही, सेवा से उत्पन्न सूक्ष्म बंधन, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, वहां से कहीं ना कहीं मैं उत्पन्न होता है। तो मार्ग एक ही है, चेकिंग। चेकिंग होते ही उससे छूट जाते हैं, जैसे ही उसके प्रति ज्ञान होता है फिर हम वो स्वतः ही नहीं करते। तो अपने आप से पूछना, इसको हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों में क्या क्या अपने आप से पूछना है, ज्ञान में क्या पूछना है, योग में क्या पूछना है, धारणा में क्या पूछना है और सेवाओं में क्या पूछना है। ज्ञान में क्या पूछना है स्वयं से, ज्ञान कितना धारण किया है, ज्ञान कितना समझा है, ज्ञान का कितना चिंतन हम कर रहे हैं, कितना मनन शक्ति हमारी बड़ी है, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर हो, ऐसा प्रकाश कि अंधकार वहां आ ना सके, इतना ज्ञान का प्रकाश अंदर हो। सारी गलतियां जो होती है वो अंधकार में होती है, अंधकार हुआ गलती हुई, जहां ज्ञान है वहां गलती नहीं होगी। यहां अगर हम बैठे हैं अभी तो बहुत कम संभावना है कि बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चले या विकार के संकल्प आ जाए, क्योंकि यहाँ ज्ञान का प्रकाश है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश कम हो जाता है, विस्मृत हो जाता है, वहां अंधकार आता है, वहां गलती होती है, कोई एक संस्कार वहां प्रकट होता है और फिर से ज्ञान में आते हैं, और ज्ञान में प्रकाश में आने के बाद फिर पश्चाताप करते हैं कि वो क्यों हुआ, परंतु इस पश्चाताप से उससे मुक्ति नहीं होती है, फिर से वैसा ही अंधकार होता है, फिर से वही गलती, फिर से ज्ञान के प्रकाश में आते हैं, प्रकाश में आने के बाद फिर पश्चाताप, कर्म विकर्म पश्चाताप, विकर्म पश्चाताप, विकर्म पश्चाताप की लंबी कड़ी निर्माण होती है और फिर वो संस्कार बनता है। विकर्म हुआ पश्चाताप हुआ, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना विकर्म हुआ, परंतु उसका पश्चाताप बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ज्ञान है। अगर अज्ञान में होते तो इतना पश्चाताप नहीं होता,
यहां से जाना ही नहीं, रहेंगे।
तो जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो, उन आत्माओं का संग करना जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश हो, जिनमें ज्ञान का प्रकाश, ऐसा प्रकाश आंखें क्या कहते हैं उसको, चौधिया जाए, ऐसा प्रकाश हो तो डैजलिंग लाइट, उसमें अंधकार, उस प्रकाश में विकर्म नहीं होते, पाप नहीं होते, उस प्रकाश में कोई भी ऐसी गलती नहीं होती, गफलत नहीं होती। हमने अगर अपने जीवन को ही देखा तो जहां जहां हमने गलती की है, जहां जहां विकर्म पाप दुष्कृत्य किए हैं, उस समय ज्ञान की स्मृति बहुत कम होती है, ज्ञान एकदम विस्मृत हो गया है, कम हो गया है, मर्ज हो गया है। ऐसा नहीं ज्ञान खत्म हो गया है, ज्ञान है ढक गया है, मल विक्षेप आवरण। उपनिषदों में 3 चीजें कही है कि जो ब्रह्म जो है वो कवर्ड है मल विक्षेप आवरण, आवरण आ गया है उसके ऊपर एक, और फिर जैसे ही वहां से उस परिस्थिति से उस टाइम से उस स्थान से बाहर आते हैं और ज्ञान के प्रकाश में आते हैं, फिर पश्चाताप होता है वो क्यों हुआ, फिर यहाँ प्लानिंग बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ किया, फिर से फल वही होता है क्योंकि ज्ञान की विस्मृति होती है। अगर ज्ञान की विस्मृति होने ही ना दी जाए तो ज्ञान सूर्य सदैव प्रकट रहे तो अंधकार कैसे हो सकता है। एक मुरली में बाबा के महावाक्य रहते कि ज्ञान सूर्य सदा ही प्रकट रहे, सदा प्रकट रहे। जो स्मृति, जो स्थिति, जो स्मृति अभी है ज्ञान की, वैसी ही निरंतर अगर रहे 24 घंटे तो कहां गलती होगी बताओ, हो सकती है गलती। ऐसी ही संपूर्ण जागरण की अवस्था, जागती ज्योत, नहीं हो सकती। ज्ञान कम हो जाता है, ज्ञान विस्मृत हो जाता है, ढक जाता है, तब गलतियां होती है। तो चेकिंग करना है, ज्ञान की चेकिंग, योग की चेकिंग, सहज योगी, निरंतर योगी, स्वतः योगी, श्रेष्ठ योगी, कर्म योगी, 5 बातें बताई थी। उसके लिए क्या करना है, डायरेक्शन मिलते ही अशरीरी, बार बार देह से डिटैच होने का अभ्यास, अंतिम अभ्यास यही है। ये कोई नहीं देखेगा कितनी सेवा की है, क्या ज्ञान सुनाया है, कितना क्या किया है, शरीर से अलग होने का कितना अभ्यास किया है, शरीर की स्मृति, शरीर के भान से परे हो जाना, यही अभ्यास है, आना और जाना। इस देह से अलग हो जाना, डिटैच हो जाना। ऐसे कुछ हमारे पास पावरफुल संकल्प चाहिए जो हमें एकदम से डिटैच कर दे शरीर से। कौन से हो सकते हैं? एकदम शक्तिशाली संकल्प, आईवी सीधा, इंजेक्टेबल, टैबलेट नहीं, सिरप नहीं, गोली नहीं, सीधा। पहले जमाने में इंट्राकार्डियक इंजेक्शन देते थे, अभी बंद हो गया है वो। सीधा यहाँ पर, सीधा यहाँ पर। हमने जब सबसे पहली बार देखा था ऐसा लगा था मुझे भी देना है, कितना मजा आता है ऐसा इंजेक्शन सीधा हार्ट में देने को। तो इंटर्नशिप में एक बार एकदम इमरजेंसी पेशेंट आ गया तो हमारे सीनियर ने कहा दो। मैंने कहा कभी मैं बोलू कैसे कि दिया नहीं, उन्होंने कहा दो, फटाफट लिया, दिया तो कुछ आया ही नहीं। देते ही पहले सिरिंज को खींचते ही ब्लड आना चाहिए, मतलब वो हार्ट में है नीडल, और फिर देना होता है। तो दूसरी बार दिया तो ब्लड आया तो बहुत खुशी हुई एकदम, और फिर सीधा इंजेक्ट किया हार्ट में। पंचर होता है उसे कुछ नहीं, तुरंत इतनी छोटी होती है, पतली होती है, गया बराबर हार्ट में जाना चाहिए, ब्लड आना चाहिए, एस्पिरेट करो तो, और फिर इंजेक्ट करना होता है। तो सीधा इंट्राकार्डियक डोज, दैट इज नोन एज इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, सीधा एड्रेनालिन हार्ट में, सीधा पंपिंग। हार्ट जो रुक गया है, स्टॉप हो गया है, कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन जो है, उसमें इंट्राकार्डियक देके हार्ट फिर वापस थोड़ा बीट करना चालू कर दे। तो ऐसा ज्ञान के कौन से पावरफुल शक्तिशाली इंट्राकार्डियक संकल्प है,
तो
इंट्राकार्डियक देना है। कौन से संकल्प? एक संकल्प दो, संकल्प चाहिए एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है, निंदा हो रही है, ग्लानी हो रही है, अपमान हो गया है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दिया है, अपमान हुआ है, निंदा हुई है, ग्लानी हुई है, एकदम से कुछ हुआ है, किसी ने डांटा है, किसी ने क्रिटिसाइज किया है, विरोध किया है, ये एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये सब क्या है? बहुत ही छोटी चीज है ये ड्रामा की सीन। अच्छा उसे पसंद है तो मुझे क्यों नहीं? और मैं कल्प कल्प की विजय रतन हूँ। और चलो इसको अभी मैं होमवर्क के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। नागेश भाई, सुरक्षा के सप्त कवच, टॉपिक का नाम है। सभी लिखेंगे इसके ऊपर, लिखेंगे या सात कवच शक्तिशाली, सुरक्षा के सात कवच कौन कौन से हैं, जो कि एग्जाम मतलब ये टॉपिक स्पेसिफिक है, सात मतलब सात चीजें आनी चाहिए। तो ऐसी सात पावरफुल संकल्प विस्तार के साथ कि जिनका प्रयोग करते ही मन बुद्धि उस स्थिति से एकदम अलग हो जाए, डिटैच हो जाए और शक्तिशाली स्थिति में हम स्थित हो जाए। वो चाहे संकल्प हो सकता है, कोई विधि हो सकती है, कोई ड्रिल हो सकती है, कोई बाबा का महावाक्य की स्मृति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सात शक्तिशाली बातें या कवच ब्राह्मण जीवन में सुरक्षा के सप्त कवच।
इंजेक्शन लग गया
तो वो कौन से सेवन इंट्राकार्डियक इंजेक्शन थे जो देते ही एकदम से हार्ट जो एकदम रुक गया था, किसी ने कुछ कहा और एकदम नम हो गया, समझ नहीं आया क्या हो रहा है, ज्ञान का चिंतन ही बंद हो गया, उसको सीधा इंट्राकार्डियक दे दिया और धड़कना चालू हो गया फिर से। तो योग के प्रश्न स्वयं से पूछने हैं, उसके बाद में धारणाओं के प्रश्न, तो बहुत बड़ी लिस्ट है, सारे दिव्य गुण उसमें आ जाते हैं, और सेवाओं के प्रश्न पूछना है। मैं जैसी सेवा कर रहा हूं, क्या बाबा उस सेवा को देखकर खुश है? क्या मैं कारोबार तो नहीं कर रहा हूं? केवल कारोबार, ड्यूटी पे गए, ड्यूटी पूरी की, चलो घर, हो गया, जो करना था कर लिया, जिसको जो देना था, जिससे कुछ लेना था, लेन देन किया, हो गया। बाबा ने सेवा की बहुत ऊंची ऊंची परिभाषाएं दी है, तो ये चेकिंग करो। सब कौन सा दिन याद करते हैं? कौन सा दिन याद करते हैं? दूसरा प्रश्न 21वां, हाँ बाबा मिलन का दिन याद करते, बस एक ही। और अच्छा जो फ्यूचर कौन से दिन आएंगे, अच्छा ये तो सोचा ही नहीं था, आगे आने वाले दिनों को याद करते हैं। अच्छा और पास्ट वाले, बचपन के दिन, चार प्रकार के बचपन, चार या पांच? अच्छा तीन की चार,
तीन बताएं।
परंतु कितने हैं?
ज्यादा भी हो सकते हैं,
ज्यादा भी, देवता ही बचपन भी तो है। हाँ। वो नहीं बताया। और तो कौन सा दिन याद करते? बचपन के दिन याद करते, बाबा मिलन का दिन याद करते, जो हो गया और जो होने वाला है, बाबा से पहली बार मिले वो दिन याद करते हैं, बाबा से मदद के दिन, बाबा से विशेष मदद मिली किसी दिन, हाँ जन्म का दिन, वही मर्जी व जन्म का दिन, वो भी है मर्जी व जन्म का दिन, डाइंग अलाइव, शिव जयंती का दिन, बर्थडे का दिन, रक्षाबंधन का दिन, न्यू ईयर का दिन, सारे त्योहार। और कौन सा दिन याद करते? एग्जाम का दिन और रिजल्ट का दिन। एग्जाम का दिन, जीवन में जो बड़ी एग्जाम आई ना वो दिन, होमवर्क का दिन, होमवर्क करने का दिन, और होमवर्क करके नहीं करके आने का दिन, हाँ सफलता जिस दिन मिली उस दिन बाबा ने उस मुरली में कहा संडे की तिलक दो स्वयं को, विजय का स्लोगन, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, नारा गरीबी हटाओ, इधर निर्बलता हटाओ। तो कौन सा दिन याद करते? बच्चों की थकावट के क्या क्या कारण है? किसको दिया था ये? यही था कोई थकावट के कारण,
उनके पीछे को बैठा था।
हाँ थकावट के कारण
विठल भाई को दिया।
हाँ विठल भाई को दिया था। हाँ तो बोलो ना, तो बोलते ही नहीं। व्यर्थ संकल्प और निगेटिव, व्यर्थ काम इतना नहीं थकाता है, सेवा नहीं थकाती इतना, सेवा तो करने को कहो तो 18 घंटे भी कर सकते हैं, वो नहीं थकाता है, थकाने वाला कुछ और है, थकाने वाला व्यर्थ है, थकाने वाला व्यर्थ संकल्प है, थकाने वाला निगेटिव है, वातावरण में व्यक्तियों के प्रति जो निगेटिव भाव है वो थकाता है, थकाने वाला है हमारे बहुत ज्यादा बोल। सेवा मौन में भी की जा सकती है, परंतु इतना बोल रहे इतना बोल रहे वो बोल थका रहे एक्चुअली, सेवा नहीं थकाती है, वो भी थकाता है, दूसरों का दबाव प्रेशर,
अपनापन नहीं है,
अपनापन नहीं है, एक भाव नहीं है, मैत्री भाव नहीं है सेवा क्षेत्र में, ईर्ष्या का भाव है, प्राप्ति का अनुभूति नहीं है, या कभी कभी अतिश्रम भी थकाता है, आराम का अभाव भी थकाता है, टायर्डनेस, फटीग जो होता है ना, फटीग पर भी बहुत सारे प्रयोग किए गए, फटीग केवल बायोलॉजिकल नहीं है, केवल केमिकल नहीं है, बायोलॉजिकल भी है, फटीग अर्थात थकान, इंग्लिश में फटीग कहते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किए गए, दो प्रकार के कुत्ते लिए गए, एक कुत्ते को बहुत थकाया गया, फिर उसका खून निकाला गया और दूसरे कुत्ते के अंदर डाला गया जो कि थका हुआ नहीं था, आराम से बैठ रहा था, तो वो इतना थक गया बैठे बैठे कि सो गया, फिर जो सोया हुआ कुत्ता था उसका ब्लड निकाला गया, फिर जो थका हुआ था उसमें डाला गया तो उसकी थकान कम हो गई। तो कहते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस तो है परंतु इतना सिंपल भी नहीं है कि थकान को ट्रांसफर कर दे इधर से उधर, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है, मेन तो ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, शरीर की नर्व्स थक जाती है, तो उन्हें स्लीप अगर नींद दी जाए तो वापस रिवाइटलाइज, वापस शक्ति आती है। तो अपर्याप्त निद्रा ये भी एक कारण है, अपर्याप्त आराम या दिनचर्या ही सेट नहीं है, आज इधर कल उधर, आज 10 बजे सो रहे कल 11 बजे सो रहे, आज इतने बजे उठ रहे कल उतने बजे उठ रहे, दिनचर्या की सेटिंग नहीं है, भारी होके सेवा करते हैं, पहले ही संकल्प करते हैं, एकदम भारी भारी भारीपन बहुत ज्यादा रहता है। और जो दिनचर्या की बात कही, कल एक विदेशी भाई मिला था, उसने कल विदेशी भाई बहनों कहीं तो कुछ दिनों पहले एक लेक्चर दिया था, सेल्फ मास्टरी पर क्लास कराया, ठीक है सबको, और उस दिन रात में आया 10 बजे सो गया, उठा तो सीधा 7 बज गए। क्लास कराया था सेल्फ मास्टरी पर, विदेशी होगा और आग जो खुली सीधा 7 बजे, अभी रोज जल्दी उठने वाला है परंतु अभी भी अप डाउन चल रहा है। ये जब तक नियमित नहीं होता है तब तक कहां से योगी जीवन हो सकता है। नियमितता रेगुलर पढ़नी है, कुछ दिन पहले मुरली में आया था, परसों ये पढ़ाई तुम्हें रेगुलर पढ़नी है, नियमित
बीमारी,
हाँ बीमारी हो तो
बहाना
नहीं दे सकते इसमें। तो ये थकान के कारण है। लास्ट प्रश्न ले लेते हैं, बच्चे किस बात में किस बात में होशियार है?
बहाने
बानी बहाना बाजी और हाथ उठाने में, दो दो हाथ उठाने में और ज्ञान सुनाने में तो बहुत होशियार है, बाप से भी ज्यादा अच्छा ज्ञान सुना सकते हैं। बाबा ने कहा एक बार तो
एक टॉपिक दिया जाए तो
तीन तीन घंटा भी कर सकते हैं और कभी नहीं भी करते। और बाप को खुश करने में और किस बात में बच्चे होशियार है? बाबा से प्यार करने में होशियार है, सेवा करने में होशियार है, उठने में होशियार है, गुड मॉर्निंग करने में, धारणाओं पर चलने में। वो पॉजिटिव पॉइंट्स है, सारी नेगेटिव पॉइंट्स दिलासा देने में। आप चिंता नहीं करो, हो जाएगा ठीक, कोई चिंता मत करो, हम सब हो जाएंगे ठीक चलेंगे। पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं अच्छा तुम्हारा थोड़ा तीव्र करो, बच्चे कहते हैं हमारा अच्छा चल रहा है।
बाबा को
मुरली सहित डेट सहित बाबा के ही पॉइंट सुनाते, आपने इस मुरली में इस तारीख को ये पेज पर ये कहा था। अब बोलो ब्रह्मा बाबा वजन हो तो ये सारी चीजों में बच्चे बहुत होशियार है। और भी चिंतन किया जा सकता है। आज किसका है? ज्ञानेश्वर भाई। तो हाँ जी, चिंतन बच्चे इन इन बातों में होशियार है। तो ये आगे के जो प्रश्न है ये आज रात को पूरा कर लेंगे, 8:30 बजे से 9:30-10 बजे तक रात की क्लास में, ठीक है, ताकि ये पूरा हो जाए। कभी 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 आज ये नहीं तो ये लंबा चलेगा, मनसा सेवा रह जाएगी,
पूरा कर देंगे।
आज इसको पूरा करना है, इसलिए इसको अंतिम
आहुति।
तो आज हमें सकाश देनी है संसार भर में जो सिंगर्स गायक, तो उन आत्माओं को सकाश देनी है।